সর্বাত্মিকালেতে সৌভাগ্য লাভ করে দিয়ে অত্যন্ত তাহার মহিমার অত্যন্ত ঊর্ধ্বে, এমনকি সমুদ্র তাহাকে আশ্রয় করে দিয়ে এই গৌরচন্দ্রের সব লীলাগুলিকে রসাস্বাদন করেছেন। এই স্থানেতে জন্মমুনি থাকা কালেতে ভীষণ পিতামহ আসেন এবং জন্ম ঋষি তাহাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, এইখানে ভীষ্ম টিলা কোথাও নিকটে আছে গঙ্গার ধারে, ওইখানে তাহাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশ তিনি পাঁচ পাণ্ডবগণকে দিয়েছিলেন মহাভারত যুদ্ধের পরে, যখন এই পাঁচজন অত্যন্ত শোকেতে বিহ্বল হয়ে গেল যে সামান্য একটি রাজ্যের জন্য আমরা আমাদের গোত্রের সমস্ত লোককে আমরা হত্যা করিয়েছি, সব বিধবা বিধবাই হয়ে গিয়েছে, কোনো লোক আর নাই, এখন আমরা রাজ্যটা কেন নিলাম, কেন মহাভারত যুদ্ধ করাই নামে এই রাজ্যের জন্য, আর আমরাও ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাব হিমালয়েতে। তখন ভীষ্মদেবের কাছে কৃষ্ণ নিয়ে যান এবং সেখানে ভীষ্মদেবকে বলেন আপনি এদেরকে একটু সান্ত্বনা দেন। উনি বললেন যে আপনার থাকলেই আর আমি এদেরকে সান্ত্বনা দিব, আপনি সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। তখন তিনি বললেন যে আমি এদের সখা, এদের বরাবরিওয়ালা এখন হয়েছি, আপনি এদের পিতামহ, অতএব আপনি এদেরকে কিছু কথা বলুন। যখন কথা বলতে আরম্ভ করেছেন তখন দ্রৌপদী দেবী তিনি অঞ্চলেতে মুখ লুকিয়ে একটু মন্দ মন্দ হাসছেন, মুস্কিয়েছেন। তখন উনি জিজ্ঞাসা করলেন ভীষ্ম পিতামহ, মা তুমি কেন হাসছ, বারবার জিজ্ঞাসা করে তো তুমি বলো তুমি আমার কন্যা তুল্য। তখন তিনি বললেন যে দাদু মানে পিতামহ, আমি এই জন্য হাসছি যে সময়তে আমাকে উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছিল সভাতে আপনি ওখানে বসেছিলেন, দুর্যোধন মদান্ধ হয়ে তার ভাই দুঃশাসনকে রজস্বলা অবস্থাতে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে আসে সভা মধ্যে, যেখানে আমার পতিরা আছে, যেখানে ধৃতরাষ্ট্র গন্ধারী কৌন্তি ইত্যাদি সব, আর আমাকে উল্লঙ্ঘন করে তাহার জঙ্ঘাতে বসাবে, আর আপনি ওইখানে তে হেঁট মাথা করেছিলেন, আপনার এই জ্ঞানটা তখন কোথায় ছিল, আজকে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন। তখন ভীষ্ম পিতামহ বললেন অভিমন্যু বধকালেতে আপনি ওর মধ্যে ছিলেন, ওকে বধ করাইলেন, তখন আপনার এই ধর্মের জ্ঞান কোথায় ছিল, যখন লক্ষাগৃহেতে আমাদেরকে জ্বালানো হচ্ছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন, যখন ভীমকে লাড্ডু খাওয়ানো হলো বিশ্বে তখন আপনার এই জ্ঞান কোথায় ছিল। তখন ভীষ্ম পিতামহ বললেন পুত্রী তুমি ঠিক বলছ, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে কৃষ্ণের স্মরণ, তখন জ্ঞান বুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে যায়, আমি তখন মহা দুর্মদান্ধ দুর্নীতি পারায়ণ কৃষ্ণের অভক্ত এই দুর্যোধনের অন্ন খেয়েছিলাম, এই জন্য আমার মতি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমার মধ্যে অসুর প্রবেশ করেছিল, এই জন্য জ্ঞান আমার কিছু হারা হয়ে গিয়েছিল, আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, এখন আমার বাণেতে জর্জরি শরীর জর্জরিত হয়ে রক্ত সবগুলি বেরিয়ে গেছে, দুর্যোধন অন্ন জল যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে গেছে, সৎসজ্জা বসে আমার এক দু মাস হয়ে গেছে, উত্তরায়ণ পর্যন্ত আমি এমনি আছি না খেয়ে দে, অতএব আমার এই সবগুলি বিকার দূর হয়ে গেছে, এখন আমার নির্মল জ্ঞান হয়েছে, আর বিশেষ করে কৃষ্ণকে সামনে দেখে আমার হয়েছে, এই জন্য আমি বলছি মা বিষয় অন্ন খাইলে এই রকম হয় দুর্গতি হয়, বিষয় অন্ন খাইলে আমরা হাত বাড়িয়ে রাখি, বিশেষ করে আমরা ব্রহ্মচারী ইত্যাদি সব খুব সাবধান থাকা উচিত, বিষয় অন্ন খাইলে কখনো চিত্ত শুদ্ধ থাকতে পারে না, এই জন্য এই বিষয়তে ঠিক থাকা উচিত। দুটি কথা, আমরা কোথায় কোথায় থেকে ভিক্ষা করে সব নিয়ে আসছি, তার মধ্যে চার আনা দু আনা ভাগ করি কি আট আনা আট আনা বারো আনা চার আনা কিছু পকেটে যায়, অগ্রভাগ খেয়ে নি আমার ভোগেতে লাগাই, এদের দুর্গতি কোথায় হবে, কোন নরকে যাবে, এটা বুঝে রাখুন। সংসারের লোক একবারে বিশ্বাস করে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবার জন্য দিচ্ছে, আর ওইগুলিকে আমরা পৃথক করে হজম করতে পারব যদি গুরু বৈষ্ণবকে না দিই? আর একটু বিষয়ীর অন্ন খাইলে কি হয়, আমরা অতি বাড়ি বুদ্ধিমান হই। অতি বাড়ি বুদ্ধিমান মানে জানেন, খুব বড় বুদ্ধিমান কি, এই বোকার হাট ঠাকুরের সামনে কাছে কাছে যায়, আমরা পরম বুদ্ধিমান। আমরা কারেতে কি উঁচু বাসেতে কি ট্রামেতে কি যা বারো বাহন তার উপরে চলে যাব, কেউ দেখবে না আমাদের। আরে বেটারা দুর্ভাগা, আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার সঙ্গে এসেছে যাদের দশ দশ বিশ বিশ চালিশ চালিশটি কার আছে, আমাদের সঙ্গে হাতে পায়ে চলছে, তাদের পায়ে ফোসকা আছে তথাপি চলছে। আমি বারবার বলছি যে তোমরা গাড়িতে চড়ো, আমার চলবে। আমি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত সবসময় ঠাকুরের সঙ্গে থেকে দিয়ে হেঁটে পরিক্রমা করেছি, এখন আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু দৈবক্রমেতে আমি পারি না। কোথাও জগতের লোক এসে মহাপ্রসঙ্গে যে হেঁটে পায়ে পরিক্রমা করছে যে মহাপ্রভু দেখবে, তাপের মধ্যে যাচ্ছি, পায়ে ফোসকা হয়ে যাচ্ছে, তথাপি কারেতে চাবো না, বাসেতে চাড়বো না। আর কোথায় আমরা দুর্ভাগা, আমার নজর বাঁচিয়ে কি অন্য বাঁচিয়ে নিজেকে মনে করছে পরম বুদ্ধিমান, গাড়িতে চড়ছে, রিক্সাতে চড়ছে, কোনো সময় এতে বাসে চড়ে মাথা হেঁট লুকিয়ে যাচ্ছে। আরে মূর্খ গণি, কোথায় আমার সঙ্গে দেখছে যেতে, কোথায় ইংল্যান্ড আমেরিকা সব থেকে লোক আসছে, এখানকার ইন্ডিয়ারও দিল্লি থেকে লোক এসেছে, বম্বে থেকে, পুনা থেকে, কোথায় কোথায় থেকে এসেছে, আর সব হেঁটে চলছে। আর তোমরা দুর্ভাগা, কেউ পঁচিশ বছর বয়স, বিশ বছর বয়স, আঠারো বছর বয়স, আর তোমরা এই দুর্ভাগা, তাহলে মহাপ্রভু কৃপা কিরকম হবে বুঝো? এই জন্য যদি তোমরা মহাপ্রভু জন্য ক্লেশ স্বীকার করো, তাহলে মহাপ্রভু দেখবেন তোমাদের ক্লেশ, তা চিত্ত হবে দ্রবিত এবং কৃপা তিনি অদ্ভুত ভাবে করবেন, তখন আমাদের মঙ্গল। পরিক্রমা কিসের জন্য? বাহিরের লোকের জন্য, আমাদের জন্য নয় পরিক্রমা। এই জন্য যাহাদের সাধ্য ঠিক অসমর্থ তারাই কোন সময় গাড়ি টাড়িতে চড়বেন, অসমর্থ যারা নয়, যারা সামর্থ্য আছে চলবার, তারা সব পরিক্রমা চলবেন, হরি কথা শুনবেন। কতগুলো লোকের হরি কথা শুনবার রুচি নাই, যাবে খাবে দাবে এদিকে করবো ওদিকে করবে, তাদের কি কল্যাণ হবে? এই জন্য যেখানে যেখানে কান দিবেন, হরি কথা শ্রবণ করবেন, হরি কথা শ্রবণের মাধ্যমে ধামকে দর্শন করবেন, তাহলে আপনাদের ধাম দর্শন হবে। আমি বললাম আপনার খারাপ মনে করবেন না, আপনাদের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য বলছি। তো এই ধামে আমরা প্রতি বছর আসি, এইখানে জহ্নু ঋষিকে আমরা দণ্ডত প্রণতি করি, তিনি আমাদের সকলকে কৃপা করুন, যে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কৃপা করুন। গৌর প্রেমানন্দ, পালকি এখন তুলে লো, পালকি তুলো আর কীর্তন করতে চলো। তদানে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় সদভক্তায় নমো। মানে আপ লোগোনে ইয়াহ পর শ্রবণ কিয়া, মে থোড়া সা হিন্দি মে বতলা রহা হুঁ, থোড়া সা অঙ্গ্রেজি ভি বতলা দেতা হুঁ। ইয়ে স্থান ইন লোগোনে বতলাযা, শাস্ত্রো মে জ্যাসা লিখা হ্যায়, মোদ্রুম দ্বীপ ইসকা নাম হ্যায়। মোদ্রুদ্বীপ মানে জিস দ্রুম কে নিচে, বৃক্ষ কে নিচে আনন্দ হুয়া, ক্যা আনন্দ হুয়া, শ্রী রামচন্দ্র জি সীতা আর লক্ষ্মণ কো লেকর কে ইয়াহ পর আয়ে থে, জেসে বৃন্দাবন মে ভান্ডির বট হ্যায়, এসে গৌড়ধাম মে ইয়ে ভান্ডির বট হ্যায়। यहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था चैतन्य महाप्रभु के समय में, महाप्रभु के स्पर्श करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो अंतर ध्यान हो गया। जैसे भांडीर वट में
पौ श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थी, राधा कृष्ण की पहली शादी वहीं पर हुई, विवाह हुआ था। दूसरी बात, वहां पर सखाओं को लेकर के वहां पर भोजन की क्रीड़ा करते थे, वहीं पर बेनुकूप है, वहीं पर रासस्थली बंसी बट भी वहीं पर है, श्री राम भैया का स्थान है और बहुत सी क्रीड़ाओं का वहां पर स्थान है। उसी प्रकार से ये स्थान है, रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। तो एक दिन बैठे बैठे अपनी कुटी में कुछ मंद मंद हास्य कर रहे थे, उस समय सीता जी ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? उन्होंने कहा, जी इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे कुछ भविष्य की बातें याद आ रही है। क्या भविष्य की बात याद आ रही है? आज तुम्हारे साथ में वन में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, तुम हमारे साथ में हो, बड़े आनंद के साथ में हो। मैं अपने लीला के अंतिम दिनों में, रामलीला के गर हजार वर्ष के बाद में मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुम वन में चली जाएगी और मैं तुम्हारे विरह में कातर हो करके मैं स्वर्ण सीता की प्रतिमा बना करके मैं उसका पूजन करूंगा। और पीछे से मैं गौ रूप में आने पर तुम विष्णु प्रिया होगी और मैया मेरी बनेगी सची मैया। उस समय में मैं तुम्हें छोड़ करके, मैया को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा संन्यास लेकर के, देश विदेश में घूमूंगा। और उस समय उसके बदले जो मैंने सोने की सीता का पूजन किया था, उस समय तुम दारू विग्रह लेकर के बनाएगी और दारू विग्रह जो हमारा है उसका तुम पूजन करेगी। किस लिए आप ऐसा करेंगे? इसलिए कि प्रेम के दो पहलू होते हैं, प्रेम द्वितीय की पक्ष दो पहलू होते हैं, एक संयोग और दूसरा विप्रलंब, एक मिलन और एक विरह। इसके बिना प्रेम नहीं हो सकता है। मिलन में दोनों में आनंद होता है, मिलने में उसमें तरह तरह के विलास इत्यादि होते हैं, और विरह में विप्रलंब में दोनों बहुत दूर हो जाते हैं। हृदय दूर नहीं होता, शरीर केवल दूर हो जाता है। उस समय विप्रलंब अवस्था में इतना दुख होता है, विश्व ब्रह्मांड के सारे दुख मिलाकर, यहां तक कि बर्वाग्नि दावाग्नि और कालकूट बीस मिलाकर के उसको 1,00,000 गुणा यदि कर दिया जाए तो भी उस विप्रलंब के में जितना दुख होता है उतना नहीं होगा, उसका दुख और होता है। किंतु इतना होने पर भी उस विप्रलंब में एक ऐसा भीतर से आनंद की धारा बहती है जो कि समस्त आनंदों के, मिलन के भी आनंद के सिर के ऊपर में वो नृत्य करती है, इतना उस विप्रलंब में एक आनंद होता है। इसलिए विप्रलंब ऊपर से दुखदायी होता हुआ भी भीतर से इतना आनंददायक है जो मिलन में भी उतना नहीं होता है, बल्कि मिलन की सुख को वो पुष्टि करता है। बिना विप्रलंब के मिलन की संपुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए इन चीजों को अनुभव करने के लिए मैं खुद अनुभव करने के लिए और तुम्हें अनुभव कराने के लिए मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में, और तुम यहाँ घर में रह करके हमारी मूर्ति की तुम पूजा करेगी। और जो प्रचार इत्यादि का है, पाषंडों का दलन है महाप्रभु का, ये महाविष्णु का कार्य है। मूल कारण यही है, वृद्ध प्रलंब की का उपभोग करना, राधा या प्रणय महिमा, ये सब इसी के अंदर में आता है। इसलिए इसका ये मूल कारण था, मैं संक्षेप में सूत्र के रूप में मैंने कहा। और भी एक यहाँ पर कारण है, यहीं पर पारसी में सारंग मुरारी जी का पाठ है। एक समय महाप्रभु जी के समय में महाप्रभु के एक परिकर थे, गृहस्थ थे, किंतु उन्होंने किसी को शिष्य नहीं किया। महाप्रभु के परिकर बड़े सिद्धांतविद थे किंतु फिर भी किसी को शिष्य नहीं किया। वृद्धावस्था हो गई उनके, ठाकुर जी को पूजा करने के लिए कभी पूजा नहीं कर पाते, कभी महाप्रभु को दर्शन करने के लिए मायापुर में चले जाते। महाप्रभु जी ने कहा, अरे भाई आप शिष्य क्यों नहीं कर लेते, आप तो बड़े योग्य हैं। प्रभु हमें योग्य नहीं, हम योग्य नहीं हैं। कहा एकदम उच्च कोटि के महाभागवत महाप्रभु के परिकर, किंतु कह रहे हैं नहीं हम शिष्य करने के लिए योग्य नहीं हैं। और मैं यदि शिष्य करना भी चाहता हूं तो इस जगत में मैं कोई एक ऐसा भी खोज करके आदमी नहीं पाता हूं जो जिसको मैं शिष्य के रूप में ग्रहण कर सकूं। कोई भी योग्य निष्कपट उच्च वंश का और समस्त गुण संपन्न शुद्ध भजन परायण जो एकमात्र भजन करना चाहता है, ऐसा मैं कोई को शिष्य ही नहीं देखता हूं, मैं किसको शिष्य करूं। महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा कल तुम जिसको देखना, सबसे पहले जिसको देखना उसी को तुम शिष्य करना, वो योग्य शिष्य होगा। कन्या अच्छा, दूसरे दिन अपने इसी भजन कुटीर से गंगा में स्नान करने के लिए गए, थोड़ी सी दूर है यहाँ से, बहुत निकट ही है, स्नान करने के लिए गए। जब वहां पर स्नान करने के लिए जब गंगा के पास में गए, थोड़ा थोड़ा अंधकार था, उस समय देखा जैसे एक आदमी मरा हुआ बहता हुआ गंगा में चला जा रहा है। उन्होंने कहा, महाप्रभु जी ने कहा जिसको पहले देखना उसी को शिष्य बनाना, उसको मंत्र देना, तो यही तो मरा हुआ आदमी मिला हुआ है और यही मिलाते इसको पहले जब देखा तो इसी को शिष्य बनाना चाहिए। किंतु महाप्रभु जी ने कैसे कहा ये मरा हुआ आदमी को, अच्छा ठीक है, बस उसको खींच करके ले आए घाट पर और लेकर के रखा और लेकर के उसके कान में गोपाल मंत्र दिया। जो हूँ गोपाल मंत्र दिया, उठ करके वो खड़ा हो गया बच्चा। होने के बाद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, महाप्रभु जी ने उसको आशीर्वाद किया और उसका कहा सारंग मुरारी, क्यों उसको दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद में ये बात फैली, अरे वो उसका लड़का वो मर गया, कल उसको सांप काट दिया था और लोगों ने देखा जब मरेगा बचेगा नहीं, बहुत उसकी दवा की गई, सब कुछ किया गया, मंत्र दिए से झाड़ा गया, बचा नहीं। उसको केले के भेले के ऊपर में रख करके और उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। यदि किसी को सांप काटे उसको जलाना नहीं चाहिए, दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, उसमें विष होता है सांप का, गंगा नदी में प्रवाहित करने से हो सकता है कि वो विष उतर जाए और वो जी उठे। बात ऐसी हुई, गंगा नदी में उसको लेकर के जब डाल दिया, रात में सवेरे सवेरे बहता हुआ उस घाट पर आया और जब उन्होंने खींच करके उसको आस लिया और कान में जही उस मुर्दे के कान में गोपाल मंत्र दिया, उठ करके खड़ा हो गया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। यह बात जबकि गांव वालों को मालूम हुई, माता पिता सभी लोग उसके पास में आए और बोले जब बात तुम घर करो। उसने कहा उनके घर वालों ने बहुत समझाया किंतु उन्होंने माना नहीं, अंत में उनको छोड़ दिया। तो वो अपने पास में यहीं पर ले आए और तब से उनका नाम हो गया सारंग मुरारी। वहां पर अभी भी 500 वर्ष का एक वृक्ष है, पीपल का शायद या किसका है, मौलश्री का वृक्ष है, उसमें सुनते हैं एक बहुत मोटा सांप है, कभी कभी निकलता है और भीतर में कुछ नहीं है, केवल बाहर से छिलका केवल पड़ा हुआ है, किंतु 500 वर्ष का पूरा हरा भरा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं अभी तक वो है। और ये इस बात की साक्षी दे रहा है सारंग मुरारी जी की और उनके कृपा पात्र मुरारी का और उनकी, वो इसलिए ये स्थान परम पवित्र है। हम लोग यहाँ पर नारायणी जी की के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर हुए, जो चैतन्य भागवत लिखा है उनका भी पाठ यहीं पर है। ये रामचंद्र लखन और सीता का ये स्थान है। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में यहाँ पर कीर्तन करते हुए अपराह्न काल में आते थे, उनका भी स्थान है। हम लोग यहाँ से प्रणाम करके और कीर्तन के साथ में हम लोग जाएंगे वहाँ जहाँ पर की रसोई हो रही है, महाप्रभु जी का भोग लग रहा है। महाप्रभु जी का भोग लग गया होगा, आप लोग वहाँ पर प्रसाद पा करके करीब 3 बजे 3:30 बजे धीरे धीरे आराम के साथ में मठ में पहुंचेंगे, वहाँ पर हम लोग हरि कथा फिर शाम को बतलाएंगे। गौर प्रमाण
doing it.